නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 4 अध्याय 30 और श्लोक संख्या 37। अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो आप सभी हमारे साथ दोहराएंगे, तेसाम विचरताम पदभ्याम तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानां पावनेच्छया तीर्थानां पावनेच्छया वीतस्य किं न रोचेत वीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः तावकानां समागमः तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः तावकानां समागमः तेषां उनका विचरतां विचरण करने वालों का पदभ्यां अपने पावों से तीर्थानां पवित्र स्थानों का पावन इच्छया पवित्र करने की इच्छा से भीतस्य डरे हुए संसारी पुरुष का किम क्यों नहीं रोचेत अच्छा लगता है तावकानां अपने भक्तों की समागमः भेंट। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, हे भगवन, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत है, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? नहीं होता, होता या नहीं होता?
होता।
तात्पर्य, भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं नहीं जाते। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं, कभी कभी। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी ते आच्छे नगर नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मोरना। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाएं। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के जो भी लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री चैतन्य के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचन भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम ही है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, उनको ये करना ही चाहिए। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्राचार्यर्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिए तक को भक्त बना दिया था, उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके हैं। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता, वह सर्वत्र, जहाँ तक के नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। श्रीमद् भागवतम 6:17-28। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। आज सारा संसार डरा हुआ है। डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ है? नहीं डरा है या डरा है? डरा है तो बोलो जोर से हाँ। तो फिर प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बलराम हॉल से हो जाएगा। निकलना चाहिए सब भक्तों को, प्रचार की बहुत ज़रूरत है। सारा संसार दग्ध हो रहा है, भयभीत है कब क्या होगा, कब क्या नहीं हो जाए। न घर में चैन, न ऑफिस में चैन, न दुकान में चैन, कहीं भी चैन नहीं। तो जब कोई, कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से इस संसार से उबे हुए हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं, परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं, ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थालय में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं, वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पापपूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने जाता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पापपूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्त स्थेन गदाव्रतः, भागवतम 1:13-10। चूँकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वह जिस किसी स्थान में जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कलमस से छुटकारा पाले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों की माया के चंगुल से छुड़ाना है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्यत्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ब्रश भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम् श्रीगुरुदीनतारुणम्। भूतैर्महदेवे इमां पुरोभ्यभु निरमायस्येते यदमुष्यपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम्। सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अध्याय का नाम चल रहा है प्रचेताओं के कार्यकलाप, और विशेष करके यहाँ पर उनके द्वारा भगवान की जो है स्तुति चल रही है। किस प्रकार सुंदर भगवान के चरणों में स्तुति रूपी सुमनों को अर्पण कर रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक जो है पारसमणि के समान। तो इसलिए आज के श्लोक को हम जो है देखते हैं। आज के श्लोक में विशेष करके और भक्तों की महिमा का जो है गुणगान किया जा रहा है। हालांकि कल भी जो है सुंदर, कितना सुंदर श्लोक था, वो भी भगवान के भक्तों की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी ने भक्तों की जो है दो प्रकार के वो बताएं, एक भजनानंदी और दूसरे गोष्ठानंदी। तो जो भजनानंदी हैं वो तो एक स्थान पर रह करके अपना भजन करते रहते हैं, अपना ही कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सारे संसार के लोगों से तो वो डरते रहते हैं, बाहर जाएंगे तो कहीं जो है हम संसार में ना फंस जाएं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं, जिनको बोलते हैं भजनानंदी, प्रचारक या परिव्राजक चार, जो चार प्रकार के सन्यासी हैं, उनमें से पहला कौन सा है? कुटीदक, बहुदक और हंस और परमहंस। तो परमहंस स्टेज पर जो परिब्रा, जो मतलब क्या करते हैं, बाहर घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको परिब्राजक चार बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या रखा है? श्री श्रीमद क्या नाम है, परिब्राजक चार अष्टोतरसत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। परिव्राजक उसको बोलते हैं जो भ्रमण करता रहता है, यहाँ तक कि उसकी जो कैपेसिटी है, भगवान जिस कार्य को कर सकते हैं और कोई ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवी देवता नहीं कर सकता, उस कार्य को भगवान के भक्त कर सकते हैं। और वो हैं जो तीर्थ हैं, जो सारे संसार के जीवात्माओं को, बद्ध आत्माओं को जो पवित्र कर रहे हैं, उन तीर्थों को भी भगवान के भक्त क्या करते हैं, उनको भी पवित्र करते रहते हैं। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि जगह जगह जा करके और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए। तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, तीर्थ अपने आप में पवित्र होते हैं, लेकिन फिर भी जब भक्तों के पाप ले ले करके और उनकी दूसरे जीवात्माओं को शुद्ध करने की जो क्षमता है, कालांतर में ख़त्म हो जाती है। क्योंकि संसार का ये नियम है, परमानेंट कोई भी संसार में कोई नहीं, और उसकी हर वस्तु कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, केवल एक भगवान के भजन को छोड़ करके। बाकी संसार की हर वस्तु, किसी के पास में कोई हुनर है, बुद्धि है, बल है, और भी कुछ हो सकता है, धन है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पोजीशन है, एक दिन ये सब छूटना ही है। तो इसलिए हालांकि तीर्थों के पास में इतने पवित्र हैं कि पापी जीवात्माओं के पाप ताप को ख़त्म कर सकते हैं और करते रहते हैं, लेकिन कालांतर में इनके पापों की भी जो है क्षमता होती है, वो भी जो है एक समय आता है जब पाप करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर वो भक्तों का संग चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार इसी ब्रज के अंदर ब्रजवासियों की इच्छा हुई कि हम लोगों को चल करके तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, बहुत दिन हो गया है अब इधर, कुछ अपना परोपकार भी कर लेना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े जो वयोवृद्ध थे, नंद आदि, उपनंद आदि, उन्होंने जो है इष्टी गोष्ठी की, और सभी जो वयोवृद्ध थे, पुरुष स्त्री सभी को आमंत्रित किया और ये प्रस्ताव रखा कि देखो अब हमारा जो समय है न जाने कितने दिन का है, हम सभी वयोवृद्ध हो चुके हैं, इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, अब तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। तो सबकी सम्मति हुई, बोला ठीक है, तो हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए और इसकी तैयारी करना चाहिए। उसी समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने देखा कुछ मीटिंग चल रहा है, तो उन्होंने जो है बाबा से पूछा, नंद बाबा से, बाबा बाबा ये सब क्या चल रहा है इधर। तब उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, अब हम थोड़ा सा तीर्थों में भ्रमण करना चाहते हैं, तीर्थों में थोड़ा सा घूम करके आना चाहते हैं। बोला तीर्थों में भ्रमण करना जाना चाहते हैं? बोला हाँ बेटा। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाबा, तुम ये नहीं जानते हो कि वृंदावन में तो सारे तीर्थ वास करते हैं। नंद ने कहा बेटा सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जो है केदार बद्रीनाथ जो बहुत पुराने तीर्थ हैं उनमें तो भ्रमण करना ही चाहिए, प्रयागराज के दर्शन करना चाहिए। अचानक उन सारे जितने भी जो हैं वहाँ पर जो सभासद बैठे हुए थे उन्होंने देखा एक काला घोड़ा हिने नाता हुआ, क्या हुआ? उसी समय जो है ब्रज में आया और बड़ी जोर से ठोकर मारता हुआ हिने नाता हुआ जब ब्रज में आया तो सभी की दृष्टि अचानक उनकी तरफ चली गई, क्योंकि हिने ना रहा था, बिल्कुल ब्लैक। और उसी समय उन्होंने देखा कि उस घोड़े ने क्या किया, इसी रमण रेती में जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, इसी वृंदावन धाम में, इसी रमण रेती में उसने क्या किया, उस ब्रज रेती के अंदर लोटपोट लगाई, इधर से पलटा मारा उधर से पलटा मारा, बस दो ही पलटा ही मारना था, तीसरे पलटे की तो जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने देखा कि वो काला घोड़ा कैसा बन गया है, बिल्कुल एकदम व्हाइट बन गया है, दूध के फैन जैसा बन गया है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य हुआ तो उन्होंने जो है सब आपस में पूछने तर्क वितर्क करने लिए, क्या है, कौन है, कैसे कैसे हो गया। तब कन्हैया ने कहा बाबा ये सब मैं बताता हूँ, मैं इसका राज जानता हूँ, सुनो, ये जो देख रहे हैं ना ये घोड़ा, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये तीर्थ नहीं है, ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है जो घोड़े के रूप में आप सभी को दिखाई दे रहा है। जब ये प्रयागराज सारे तीर्थों में जो पापी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पापों को तीर्थों में छोड़ करके आते हैं और तीर्थ अपने पाप को फिर क्या करते हैं, वो प्रयागराज में छोड़ देते हैं। और प्रयागराज क्या करता है, जब देखता है कि सारे पापों से बिल्कुल काला हो चुका है तो घोड़े के रूप में फिर इसी वृंदावन में आता है, इसी रमण रेती में आता है और आकर के इस ब्रजभूमि में जो उनके भक्तों से जो है ये रजभूमि ओतप्रोत है, हर एक एक कदम पर जो है उनका चिन्ह पड़ा हुआ है, इसमें जब लोटपोट करता है तो क्या हो जाता है, वही प्रयागराज काले घोड़े से फिर व्हाइट घोड़ा बन जाता। बोलो श्री वृंदावन धाम के। तो आप ये सभी देख रहे हैं ये प्रयागराज है, जहां तुम जाना चाहते हैं प्रयागराज स्वयं यहां आकर किसी वृंदावन की रज में जो है लोटपोट करता है, तो तुम बाबा वहां सब जाकर के क्या करना चाहते हो, सारे तीर्थ तो यहीं बात करते हैं। तब जो है उन्होंने जो है फिर अपना जाने का मत बना कैंसिल कर दिया और उस दिन से सबने संकल्प लिया कि आज के बाद हम किसी भी तीर्थ में नहीं जाएंगे, इसलिए ब्रजवासियों को कोई तीर्थ में जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार तेसाम विचरताम पदभ्याम जो गोष्ठानंदी भक्त होते हैं, जो प्रचारक भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसके लिए, प्रचार करने के लिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो उन्होंने जो है 500 बरस 550 बरस जो घोषित कर दिया था कि एक दिन पृथ्वी पर ऐसा आएगा जो मेरी वाणी का सर्वत्र प्रचार प्रसार होगा, उसी वाणी को लक्ष्य करके और स्पेशल प्रभुपाद जी ने इसको हम सभी के लिए इंगित किया है कि जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में है उन सभी का प्रत्येक कर्तव्य बनता है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को या भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का सर्वत्र क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। उससे क्या होता है, तो तेषां विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया, तीर्थानाम तीर्थों को पावन इच्छया, पावन करने की इच्छा से। भीतस्य किम रोचेतः, अब बताओ जो संसार के अंदर व्यक्ति भीतस्य भयभीत हैं, डरे हुए हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो किम नो रोचेतः या किम न रोचेतः, क्या भक्तों का इस प्रकार आना, शुद्ध भक्तों का आना, उनके स्थान पर जाना, उनको कृष्ण कथा कहना, भगवत कीर्तन कराना, क्या अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जोर से बोलो, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी जो कथाएं हैं, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कभी भिरीडितं कल्मषापहं श्रावण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजन। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम, जिनका जीवन तप्त हो चुका है, दग्ध हो रहा है, संसार दावा नल लीढ़लो का, सारे संसार में दावा लगी हुई है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ जाकर के हमारे प्रचार कार्य में कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इस समय तो सारा संसार दग्ध हो रहा है, क्योंकि एक कलयुग चल रहा है, और कलयुग की हालांकि है तो ये प्रारंभिक अवस्था, लेकिन बहुत खतरनाक अवस्था तक ये पहुँच चुका है। तो सारा संसार जो है दग्ध हो रहा है। तो ये जो भगवान की कथाएँ हैं, जो हैं, क्या नाम, जो संसार में जो लोग दग्ध हो रहे हैं, तो तब कथामृतम, कथामृतम, ये कथा किसका काम कर रही है? अब अमृत का काम करती है, उन लोगों के लिए जो संसार में डरे हुए हैं, संसार की अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए भगवान की कथा किसका काम करती है? अमृत का काम करती है। कभी कभी तो गोपियाँ गुस्से में बोलती हैं, आपकी कथा मारने वाली है, तब कथा अमृतम, जो कथा सुनेगा वो मर गया, मतलब मर गया मतलब वो संसार से बिल्कुल बर्बाद हो गया, संसार के वो काम का नहीं रहता है। इसलिए हे कृष्ण, तुम्हारी कथा तो मानने वाली हैं, इसलिए जो सज्जन जो संसार में रहना चाहते हैं, जो संसार का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें कभी भी भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, नहीं तो बिल्कुल चौपट कर देंगे, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। लेकिन वास्तव में जिनको ये लग रहा है कि वास्तव में हम संसार में भयभीत हैं, संसार हमें जला रहा है, संसार की अनेक प्रकार की समस्याएं, पदम पदम यद विपताम, ये समस्याएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक के बाद एक आक्रमण कर रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ी टॉनिक है ये रामबाण, जिसको औषधि बोलते हैं, वो है वो भगवान की लीला कथाओं को सुने। इससे बढ़कर के ब्रह्मांड में उनके लिए और कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो इसलिए भक्तों का ये परम कर्तव्य बनता है कि जाओ। बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भक्तों का एक कर्तव्य बनता है कि जाओ, जगह जगह जा करके और उनको कृष्ण कथा कहो, भगवान के नाम का कीर्तन कराओ। जिस समय जगाई और मधाई, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, लाखों लाखों लोग, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक वृक्ष लता पता, सबका कल्याण हो जाता था उनके इस भगवत नाम के श्रवण करने से। कितना पावरफुल है, वास्तव में इसको हम समझ नहीं सकते कितना ये पावरफुल है भगवान का नाम। तो उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को आदेश किया, जाओ तुम क्या करो, घर घर में जाओ और कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा, बस ये तीन चीज कहो। तो उस समय जब जगाई और मदाई ने सुना था, जो जगाई और मदाई उस जमाने के सबसे जो है पावरफुल पापी थे, पढ़े लिखे थे चेतन, सॉरी उसमें लिखा गया है चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, ये पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, इसलिए क्या करते थे, उन पापों को करते थे जिन पापों को करने से ज़्यादा पाप हो, ऐसे पापों को वो करते थे, छोटे मोटे पाप नहीं करते थे। नोट, ये नोट करते थे किस पाप से कितना भयंकर पाप हो सकता है, तो जो सबसे बड़ा मतलब पाप करने से अधिक पाप लगे उस पाप को ये लोग करते थे, जैसे गाय और ब्राह्मणों का वध कर देना, ब्राह्मण पत्नी गुरु पत्नी के साथ में गमन करना, इतने भयंकर भयंकर पाप जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये इतने पाप हो गए थे कि इनका जो है एक दो फाइल नहीं थी, उसमें लिखा गया है कि 27 गोडाउन जो हैं इनकी फाइलों से भर गए थे, पापों की फाइलों से भर गए थे 27 गोडाउन। बोलो हरे कृष्णा। कल्पना कर लो, ये तो यहाँ तो 27 गोडाउन होंगे भी नहीं, नरक के 27 गोडाउन जो हैं यमराज ने भर दिए थे। इसलिए यमराज को ये सोचना पड़ा कि ये जो 28 नरक यहाँ बनाए हैं ये इसके किसी भी काम के नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जो है एक्स्ट्रा नरक बनाने के लिए जो है उन्होंने ये प्लानिंग कर लिया था, एक्स्ट्रा नरक बना करके कंप्लीट कर चुके थे इस जगह मदाई को उस नरक में डालने के लिए। लेकिन जिस समय उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु और जो है हरिदास ठाकुर के मुख से जो कृष्ण नाम सुना था, और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो नाम सुना, और उसको सुन करके इमिडिएटली क्या हुआ, ये प्रभाव उसका कि वो सारे के सारे जो हैं दोनों के दोनों उन सारे पापों से एकदम मुक्त होकर के और भगवान के धाम जाने के पात्र बन गए थे, केवल इसी भगवान के नाम की महिमा को सुन करके। तो जब यमराज ये सारा जो है देख रहा था, इस टीवी को देख रहा था, यमलोक में देख रहा था क्या चल रहा है मृत्युलोक में, और विशेष करके उनका जो चैनल लगा था उस समय जो है नवदीप में ही लगा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला को देख रहा था, तो यमराज बड़ा चिंतित रहता था इन दोनों के लिए, बहुत चिंतित रहता था कि आने दो इन बदमाशों को, वो मैं इनको पनिशमेंट दूंगा कि ये भी जो है भूल जाएंगे कि वास्तव में कैसा पाप होता है, कैसे पाप किया जाता है, इसलिए डेली नया कुछ न कुछ उनके बारे में प्लानिंग करता रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जगाई और मदाई क्या हो गया है, भगवान के धाम का जाने का पात्र बन गया है, उसी समय वो बेहोश हो गया। यमराज जो है बेहोश हो गया, जब ये बेहोश हो गया तो उनके जो जितने भी यमपुरी के जितने भी उनके असिस्टेंट थे, मैनेजर थे, मंत्री आदि थे, सारे के सारे इकट्ठे हो गए और बड़े भयभीत हो गए, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, इनको कैसे जो है चेतना दी जाए, कैसे ने चेतना दी जाए। जब चेतना नहीं आई तो उसी समय फिर क्या हुआ, शिवजी वहाँ पर जो है पहुँच जाते और शिवजी ने कहा ये ऐसे जागृत होने वाले नहीं हैं, क्या करो, जोर से हरिनाम करो। तो जिन्होंने कभी जीवन में हरिनाम लिया नहीं था, जिन्होंने हरिनाम सुना तक नहीं था, आज वो सब जो है क्या कर रहे हैं, सब मिलकर के जोर से जो है कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस हरी हरी हरे राम राम। तो ये जो कीर्तन की धुनि थी, अब सारे जो हैं यमपुरी के वो सब लोग मिल करके जो स्पेशल जो मैनेजर आदि थे जो सब कीर्तन कर रहे थे, तो हुआ ये कि उसकी धुनी जो है सारे यमपुरी में फैल गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी नरकों में लोग थे
इस ध्वनि को सुन सुन करके या सब चतुर्भुज रूप कोई द्विज रूप धारण करके कोई गोप बन करके कोई नारायण स्वरूप धारण करके और विमान पर बैठ बैठ करके और सब भगवान के धाम को चले गए। बोला हरि नाम संकीर्तन के ए भगवान के नाम की महिमा है। हालांकि यमराज को जगाने का प्रयास किया, यमराज तो जगे थे, जग गए थे हरिनाम से, तो इसलिए यमराज तो जग गए, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि यमराज के जितने भी कैदी थे जो जेलों में जो है बंद करके रखे थे, उन्होंने जिनको बड़ा बड़ा पनिशमेंट दिया जा रहा था और उनके जो है कई कई आजीवन कारावास था जिनका, लेकिन इमेडिएटली भगवान के नाम को सुन करके और सब जो है माला तिलक कंठी जब ले लेकर के सब भगवत धाम चले गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। वास्तव में भक्तों की और भक्तों के द्वारा जो निकला हुआ जो हरिनाम है, कल जैसे वो बोल रहे थे राधा कृष्ण प्रभु बोल रहे थे राधाकांत, भक्तों के मुख से जो भगवान के नाम का जब गुणगान होता है तो कितने भी पति से पति जीव भी क्यों ना हो और कितने भी शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वो भी ऐसे भक्तों का क्या करते हैं, सानिध्य लेते हैं। तीर्थी क्या ना भगवत विधा भागवता, स्वयं जो है युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से बोलते हैं कि हे विदुर जी, आप तो चलते फिरते क्या हैं, तीर्थ है, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, आप जो है तीर्थों को भी क्या बनाते रहते हैं, तीर्थ करते रहते हैं, उनको भी जो है पावन करते रहते हैं। तो भक्तों के सानिध्य से पापी व्यक्ति को तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ साथ में जो शुद्ध हो चुके हैं ऐसे भक्त को भी जो है बहुत लाभ मिलता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, क्यों, क्योंकि स्वान्तः स्थेन गदाव्रतः, क्योंकि भगवान के भक्त अपने हृदय को निर्मल करके भगवत लीलाओं के द्वारा, भगवत कथाओं के द्वारा, भगवत नाम के द्वारा जगह जगह प्रचार प्रसार करके अपने हृदय को शुद्ध बना लेते हैं, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो स्थान जो है किसका वास बन जाता है, फिर भगवान का वास बन जाता है। भगवान इमीडिएटली उसके हृदय में जाकर के क्या कर जाते हैं, बात करते हैं, फिर आपसे परमिशन लेने की उनको जरूरत नहीं होती है। और इस प्रकार है, जब भगवान उसके हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं तो फिर गंगार परस होइले, गंगार परस होइले पाश्चाते पावन दर्शने पवित्र करे एही तुमार गुण। फिर ऐसे भक्त स्वयं गंगा जी, आप जानते हैं ना गंगा जी एक ऐसी नदी है जो तीनों लोगों को पावन कर रही है। जिस समय जो है सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जब भस्म हो गए थे, उनकी बिल्कुल राख बन गई थी, हड्डी भी नहीं बची थी, उनको जो है कैसे जिंदा किया जाए, तो उनकी परंपरा में जो है जो क्या नाम है उनके जो क्या नाम है कई सारे जो है अंशुमान हुए, दिलीप हुए, फिर भागीरथ हुए, कई असमंजस पहले आए थे, फिर अंशुमान आए थे, दिलीप आए थे, भागीरथ आए थे, इस प्रकार जो है सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन भागीरथ की जो है प्रार्थना से जो गंगा जी क्या थी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूँगी, उन्होंने वायदा किया कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दो कंडीशन है, उसका तुम्हें उपाय सोचना होगा। पहली कंडीशन मेरी ये है कि मैं जब स्वर्ग से नीचे गिरूँगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा, क्योंकि मेरा बेग इतना पावरफुल है कि पृथ्वी में मैं क्या करूँगी, ऊपर से गिर करके सीधे पाताल में चली जाऊँगी, पृथ्वी पर मैं रुक नहीं पाऊँगी अपने को। इसलिए कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे को क्या करे, धारण करके रखे, मेरे बेग को रोक सके। और दूसरा उन्होंने जो है पूछ कहा था कि यदि मैं मृत्युलोक में जाऊंगी और मृत्युलोक में क्या होगा, जो पापी लोग होंगे अपने पापों को क्या करेंगे, वो जब मेरे अंदर धोएंगे तो उससे क्या होगा, मैं भी कैसी हो जाऊंगी, दूषित हो जाऊंगी, पाप के कारण मेरी शक्ति जो पाप को ख़त्म करने की जो शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो उसके बारे में भी तुम्हें उपाय सोचना होगा।
उन्होंने कहा था मृजति तब अध कुत्र राजन तत्र विचिन्तया।
हे राजन
क्या करो, अघम मृजामि तत्र अघम कुत्र मृजामि,
मृजन करने के लिए अर्थात उनका शोधन करने के लिए, मेरे पापों को शोधन करने के लिए आपने क्या सोचा है।
तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि साधवो न्यास्य न शांता ब्रह्मष्ठा लोक पावन हरति अघम ते अंग संगात ते स्वास्ते ही अद्वित हरि।
हे गंगा जी तुम बिल्कुल भी भयभीत मत हो, जब तुम्हारे अंदर वो भक्त स्नान करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, कौन से तो साधवो न्यासिन, न्यासिन का मतलब जिनकी सारी भौतिक संसार की कामनाएं खत्म हो चुकी हैं, इस संसार की कामनाएं और संसार से परे स्वर्ग आदि की कामनाएं भी जिनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। दूसरा शांता, जो बिल्कुल सुख दुख मान अपमान हर परिस्थिति में कैसे बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं, किसी से कटुता का व्यवहार नहीं करते, जो शांत हो चुके हैं। और ब्रह्मिष्ठा, जिनकी मति ब्रह्म में लग चुकी है, भगवान में लग चुकी है, जो हर समय भगवान की सेवा में इंगेज रहते हैं, भगवत प्रचार प्रसार में जो इंगेज रहते हैं। तो लोक पावनहा, जिनकी एकमात्र जो है इच्छा रहती है कैसे सारे संसार को जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे सारे लोग कृष्ण भक्त बन करके भगवान धाम चले जाएं, जिनकी ऐसी मति रहती है। तो बोलते हैं हरति अघते अंग संगात, केवल आपके स्पर्श मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से ही आपके जो है अंग संगात अगम हरते, उनके तुम्हारे सारे पाप क्या होंगे, बिल्कुल उसी समय जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोला अब मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार। और वही गंगा जी जो भगवत पति है, जिसको जो है स्वयं जो क्या नाम है, जब वो आ रही थी स्वर्ग लोक से, स्वयं धुरम महाराज ने यही समझा कि ये मेरी तपस्या का फल है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस गंगा जी के जो है पानी को अपने सर पर धारण किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं जो है चतुर कुमार, वो क्या करते थे, अपनी तपस्या का फल जानकर तो गंगा को जो है स्वयं क्या करते थे, वो भी अपने सर पर धारण करते थे। ब्रह्मा जी ने तो उसको कमंडल में ही लेकर के रखा था। और इस प्रकार जो है मृत्यु लोक में सर्वत्र जो है, और उसी गंगा जी से जो बिल्कुल भस्म हो चुके थे, जिनकी हड्डी भी नहीं थी, उस गंगा के स्पर्श करने मात्र से वो सारे के सारे जिंदे हो गए, और जिंदे होकर के भगवत धाम सब चले गए थे, भगवत शुद्ध होकर के मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए, इतना गंगा का प्रभाव है। लेकिन वो गंगा जी जो है किसका सानिध्य चाहती है, भगवत भक्तों का सानिध्य चाहती है। इसलिए इस संसार के अंदर प्राय हम देखते हैं सारा संसार में लोग दग्ध हैं, हालांकि इसमें जो है दिया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं कभी कभी उनको क्या है कि बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। नारायण परे सर्वे न कुतश्चन बिभ्रते स्वर्गाप वर्ग नरकेशो, स्वर्ग में कभी तो सुखी से रहते हैं, कभी जो है नरक में डाल दिए जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े कष्ट भी उनको उठाने पड़ते हैं। लेकिन तुल्यार्थ दोनों ही परिस्थिति में कैसे रहते हैं, बिल्कुल समान बने रहते हैं, और समान ही नहीं बने रहते, जहाँ भी जाते हैं सर्वत्र क्या बताते हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो देवताओं को भक्त बना देंगे, और जो है इस हमने सुना है भक्ति विनोद ठाकुर, जब स्वर्ग लोक में भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन चलता था तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है भगवत गीता पर लेक्चर देने के लिए स्वर्ग लोक जाया करते थे। बोलो हरे कृष्णा। और नरक में भी जब भक्त जाते हैं तो वहां भी जो है नरक का क्या कर देते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, कहीं बड़ी बड़ी कभी कभी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। स्वयं जो है नारद जी को दक्ष के द्वारा श्राप दे दिया था कि तू जा, तेरा घरबार ही खत्म हो जाएगा, तू किसी के घरबार का नहीं रहेगा, भटकता रह जाए ऐसे कैसे, दक्ष ने उनको जो है श्राप दे दिया था। स्वयं जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया था, ऐसे ही मेरे को उन तरुण भक्तों के माता पिताओं के द्वारा श्रापित हूँ मैं, जिनको मैंने शुरू शुरू में जा करके और अमेरिका आदि जैसे देशों में उनके भक्त, उनके बच्चों को, जो इकलौते बच्चे थे जिनके पास में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, ऐसे ऐसे बच्चों को जब मैंने कृष्ण भक्त बनाया तो उनके माता पिता के द्वारा भी मैं शापित हूँ। तो जैसे नारद जी को शाप दिया था दक्ष ने, और नारद जी उस शाप को क्या किए, वरदान समझ करके, भगवान की कृपा समझ करके, और उन्होंने प्रचार की स्पीड बढ़ा दी थी। वो बैठ नहीं गए थे कि चलो मेरे को तो श्राप लग गया है, अब जो है मैं नहीं प्रचार करूंगा, उन्होंने और प्रचार की स्पीड बढ़ा दी। तो बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी तो मैं जो है कई कई दिन रेस्ट कर जाता था, लेकिन अब तो रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एवरी डे प्रीचिंग। चलो हरि बोल। शील प्रभुपाद प्रचार संस्था गे। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी भी जो हैं उसके बाद में कभी रुके नहीं। आप समझ सकते हैं प्रभुपाद जी जो हैं 12 साल रहे, 12 साल में उन्होंने 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर डाला था। 14 बार पूरी पृथ्वी का उन्होंने मरते दम तक उन्होंने जो है पूरा भ्रमण करते रहे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हालांकि मेरे भक्त इतना चाहते थे कि मैं वहां से न जाऊं, और सुविधाओं की जो है बहुत सारी सुविधाएं देते थे, लेकिन फिर भी मैं कहीं जो है 3 दिन और 4 दिन हद से हद जो है 1 हफ्ते से मैं कहीं भी जो है ज्यादा नहीं रुक पाया। और यहां तो जो है महीने महीने कैसे निकल जाते हैं, बैठे बैठे कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए अच्छा होता हमें सबको सांप लग जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम सभी को सांप लगा हुआ, वो तो वृंदावन का प्रभाव है, इसलिए यहाँ सांप ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो रहा है। निकल बाहर जाओ, आप स्थिर नहीं बैठ सकते, आपको जाना ही होगा प्रचार करने के लिए। तो विशेष ध्यान दे लेना चाहिए हमें, जो ये शिक्षा लेना चाहिए, हमको कुछ प्राप्त करना है, कोई बड़ी पोजिशन चाहिए तो हमारे प्राप्त करने से नहीं होती है, कोई रिकमेंड करना चाहिए उसको, कोई विशेष व्यक्ति जो पोजीशन वाला है उसको रिकमेंड करता है कि ठीक है मैं तुम्हें जो है ये पदवी देता हूँ, तो ये वास्तव में प्रमाणिक हो जाता है। जैसे गोपियों ने कहा है कि वास्तव में जो भगवान के जो भक्त होते हैं, गोपियाँ रिकमेंड करती हैं कि जो भक्त हैं जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं उनको मैं क्या घोषित करती हूँ, उन्होंने कहा ये महावदान्य है, इनसे बढ़कर के और संसार में दानी ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। भूरिदा जना भूभि गृणंती है, जो पूरी पृथ्वी पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो कैसे हैं, भूरिदा जना, ओ जना महाबदन्या है, उनसे बढ़कर के भाग्यशाली और दानी संसार में कोई नहीं मिल सकता। ये गोपियां उनको रिकमेंड कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचार प्रसार करे उनको उन्होंने रिकमेंड किया है। पृथ्वी क्या है, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा से ही गुरु है। ये चैतन्य महाप्रभु उनको रिकमेंड कर रहे हैं। कोई हम जो है अपने हाथ से गुरु नहीं बन सकते, अपने शक्ति से गुरु नहीं बन सकते, लेकिन जो विशेष व्यक्ति उनको रिकमेंड करेगा वो अवश्य जो है वो पदवी ग्रहण कर लेता है, और उसके अंदर गुरु मतलब गुण आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या रिकमेंड करते हैं उनको, जो प्रचार प्रसार में लगे हैं वो वास्तव में गुरु हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ वो गुरु हैं। और श्री चेतन भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या कहा है कि जो मेरी वाणी का प्रचार प्रसार कर रहा है उनसे बढ़कर के ब्रह्मांड में मेरा प्रिय भूतकाल में था नहीं, वर्तमान में है नहीं, और इन फ्यूचर में कोई होगा भी नहीं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। और पराभक्ति बोलते हैं जिसके बंधन में भगवान, जिस भक्ति से स्वयं भगवान बंधन में आ जाते हैं, उस पराभक्ति को प्राप्त करेंगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, उसमें संशय नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से स्वयं प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपकी सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी पुस्तकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, सारे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इससे बढ़कर के और मेरी कोई प्रिय सेवा नहीं है। तो इसलिए हम सभी को क्या बनना चाहिए, जोर से बोलो, प्रचारक बनना चाहिए। क्योंकि हमें कोई अपनी इसमें कोई मतलब बुद्धिमत्ता और कोई जो है क्वालिटी हासिल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वालिटी दे दी है, प्रभुपा जी ने सब जो है अपनी कृपा दे दी है, गोपियों ने अपनी कृपा दे दी है, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा दे दी है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कृपा मिली हुई है। इसलिए हमें और इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि पहले मैं संस्कृत पढ़ लूँ या कुछ श्लोक रट लूँ या कुछ एकल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो सुना है या प्रभुपा जी की पुस्तक में पढ़ करके जाओ, जो पढ़े उसी को बस बोल दो, 100.1% सही है। वो ऐसा प्रभाव डालेगा आप उसकी बुद्धि के ऊपर और एक कालांतर में कुछ समय बाद में वो कृष्ण भक्त बन जाएगा, वो चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है और उसका प्रूफ है कि यहां लिखा हुआ है कि जो है नारद जी ने तो मृगहारी को भक्त बनाया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मृगहारी से भी जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, किरात हूण पुलंद पुलकसा आबिर यवन खस, जिनकी जाति प्रजाति तक नहीं सुनी होंगी, जो इतने नीच नीच किस्म के हैं कि प्रभुपाद जी ने तो उनको भी भक्त बना दिया, नारद जी ने तो एक मृगहारी को भक्त बनाया था। श्रील प्रभुपाद के, इसलिए सभी भक्तों को जो है उत्साह के साथ में प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, जिसे कृष्ण भक्ति का सारे संसार में डंका बजे और भक्तों की बाढ़ आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कॉमेंट है? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के गौर प्रेम नंदे।